थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से होशे नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है छुटकारा देने वाला। श्रोताओ, हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने और अपने मित्रों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सबों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से होशे नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि इसराइली परमेश्वर से विमुख हो गए हैं, वे पापमय जीवन जी रहे हैं और तब परमेश्वर उन्हें दंड देता है, आज जो हमारे जीवन के लिए भी लागू होता है। तो मेरे मित्रों, आज हम देखेंगे होशे 7 अध्याय से, लेकिन इससे पहले आइए हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि प्रभु हम फिर से आपके वचन का अध्ययन कर सकें। विशेष करके इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं अपने उन प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जो अलग अलग स्थानों पर बैठकर आपके वचनों में से सुनना और सीखना चाहते हैं। पिताजी, हमारी विनती है कि आप प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि हर एक जब आपके वचन को सुने तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए। जो भाई बहन इस समय बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित और परेशान है, पिताजी आप उन पर भी दया दृष्टि करें, उन्हें छुएं और चंगाई प्रदान करें, उन्हें शांति और आनंद दें, ताकि वे इस बात को समझ सकें कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जी हां, आज आप उनसे विशेष रीति से बातचीत करें, हम सबको आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, अध्याय 1-12 में हम देखेंगे कि इसराइल परमेश्वर की ओर फिरकर दंड से बच सकता था, क्योंकि परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम रखता है। यद्यपि परमेश्वर उनके साथ कठोरता का व्यवहार कर रहा था, वह दंड देने से पूर्व उन्हें अपने पास बुला रहा था, परंतु इसराइल परमेश्वर के पास आने की अपेक्षा अशूरों के पास गया, मिस्र के पास गया, और वे यह सोच रहे थे कि अशूर और मिस्र उनकी रक्षा करेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो मेरे प्रियो, आइए अब हम आगे देखेंगे, इसराइल मिस्र और अशूर देश के पास गया। होशे नबी की पुस्तक 7 अध्याय उसके 1 पद में लिखा हुआ है, जब मैं इसराइल को चंगा करता हूं तब एप्रेम का अधर्म और शोमरोन की बुराइयां प्रकट हो जाती हैं। वे छल से काम करते हैं, चोर भीतर घुसता और डाकुओं का दल बाहर छीन लेता है। मेरे मित्रों, राजा ओम्री ने सामरिया को इसराइल की राजधानी बनाया था और आगे चलकर आहाब और इजेबेल ने वहां अपने लिए महल बनवाया। एक बार मुझे एक मेरे मित्र ने बताया कि जब वे इसराइल भ्रमण के लिए गए हुए थे, तब उसने अपने टीम के अर्थात दल के लोगों को बाध्य किया कि वे सामरिया भी जाएं। वह चाहता था कि वे वहां पहाड़ पर चढ़कर भविष्यवाणी की पूर्ति देखें। उस संसार के सुंदरतम स्थान को परमेश्वर का दंड मिला। वह स्थान घर या महल बनवाने के लिए एक अत्यधिक मनोहर स्थान था। वहां पहाड़ पर खड़े होकर आप संपूर्ण दृश्य देख सकते हैं। पश्चिम में भूमध्य सागर है, पूर्व में यर्दन की तराई, उत्तर में हर्मन पर्वत और मगिद्दो है तथा दक्षिण में यरूशलेम है। उस स्थान से देखने पर किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है, परंतु आज वहां सब कुछ उजड़ा हुआ है। निश्चय ही यह परमेश्वर का दंड है। मेरे मित्रों, होशे के युग में ढका हुआ पाप खोला जा रहा था। उन्होंने लज्जा, आस्था और विवेक का त्याग कर दिया था। यदि वे परमेश्वर के पास आ जाते तो परमेश्वर उनके पाप क्षमा कर देता, परंतु वे पाप में डूबते ही चले गए, जैसा कि आज हमारे समय में भी कई लोग ऐसा ही कर रहे हैं। गुप्त में पाप करना बुरा है, परंतु यदि पाप का खुला प्रदर्शन किया जाए तो वह और भी अधिक बुरा होता है। ऐसा मनुष्य तब ही करता है जब वह पाप की गहराई में चला जाता है। मेरे विचार में होशे का संदेश सब देशों के लिए है। यदि परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा को पाप का दंड देने में संकोच नहीं किया तो क्या हम उसके दंड से बच पाएंगे? मेरे प्रियो, आज समलैंगिक संबंध खुलकर प्रदर्शित किए जा रहे हैं और वे समाज से स्वीकृति मांग रहे हैं। ऐसे ही अन्य पाप भी हमारे सामने हैं। आज भी वही पाप हो रहा है जो पहले किए जाते थे। तो अंतर क्या है? अंतर यह है कि पहले पाप छिप कर किया जाता था, उनमें कुछ तो लज्जा थी, परंतु आज पाप को प्रदर्शनी बनाया जाता है कि उसे संसार देखे। यह नई नैतिकता है जिसमें पाप पर पावन चक्र बनाया जाता है। पापी का प्रशंसा किया जाता है कि वह दुस्साहसी है, वह नया काम कर रहा है। एक बार मैंने सुना कि लोग एक लड़की की प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि वह एक पुरुष के साथ अवैध संबंध में रह रही थी और उससे उसके पास एक बच्चा भी था। मैं जानता हूं कि मैं दकियानुसी हूं, इसलिए मैं आधुनिक समूह में घुल मिल नहीं पाता, परंतु हमें स्मरण रखना है कि परमेश्वर का वचन बदला नहीं है। जी हाँ, पाप का प्रदर्शन विकास का चिन्ह नहीं है। हमें भली भांति समझना है कि पाप का प्रदर्शन सभ्यता को खोना है जो कभी मसीही संस्कृति से मेल नहीं खाती है। मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि हम मसीही संस्कृति को बनाए रखें जिसमें झूठ, ईर्ष्या, द्वेष नहीं होता है। होशे 7:2 में लिखा है, तो भी वे नहीं सोचते कि यहोवा हमारी सारी बुराई को स्मरण रखता है, इसलिए अब वे अपने कामों के जाल में फंसेंगे क्योंकि उनके कार्य मेरी दृष्टि में बने हैं। परमेश्वर कहता है, मैं जानता था कि वे पाप कर रहे हैं, परंतु अब वे मुझसे और दूर होकर खुलकर पाप कर रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि वे अनैतिकता की गहराई में उतर गए हैं। होशे 7:3 में लिखा है, वे राजा को बुराई करने से और हाकिमों को झूठ बोलने से आनंदित करते हैं। ध्यान दीजिए, राजा और हाकिम ऐसे व्यवहार की प्रशंसा करते थे। आज शिक्षा, विज्ञान, राजनीति या कलीसिया में अगुए जब बुरी और निंदाजनक भाषा काम में लेते हैं तो वह त्रासदी ही है। अब शब्द काम में लेने वाले अगुए को मर्द कहा जाता है, परंतु इसका अर्थ यह भी तो हो सकता है कि उसके पास शब्दों की कमी होने के कारण वह विचार व्यक्त करने में सक्षम नहीं है। दुर्भाग्य से आज इस भाषा का प्रचलन है और पूर्व काल में भी यही था, परंतु वे राष्ट्र आज मलबे में दबे हुए हैं, वे नाश हो गए हैं। होशे 7 अध्याय उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं, वे सब के सब व्यभिचारी हैं, वे उस तंदूर के समान हैं जिसको पकाने वाला गर्म करता है पर जब तक आटा गूंधा नहीं जाता और खमीर से फूल नहीं चुकता तब तक वह आग को नहीं उसकाता। यह एक अति उत्तम उपमा है। यहाँ परमेश्वर आत्मिक व्यभिचार के बारे में नहीं कह रहा है, वह घोर अनैतिकता के विषय में कह रहा है। पहले तो वे छिपकर पाप करते थे, परंतु अब वे एक खुले तंदूर के समान लालसा से जल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज पुरुष अपने पुरुषार्थ को और स्त्रियां अपनी यौवन शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं। आज अनेक देशों में यौन मनोग्रसित हैं। मेरे प्रियो, आज यह हमारे लिए एक दुख का विषय है कि हम अपने आप को गिराते जा रहे हैं। होशे 7 अध्याय उसके 5 पद में आगे लिखा हुआ है, हमारे राजा के जन्म दिन में हाकिम दाक मधु पीकर चूर हुए, उसने ठट्ठा करने वालों से अपना हाथ मिलाया। राजा शराबी हो गया है और अपना उपहास करवाता है। हम पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं, परंतु यह इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि हम इसे हर बार दोहराएंगे। जी हाँ, उत्तरी राज्य के पतन का कारण क्या था? मूर्ति पूजा, परमेश्वर का त्याग, शराब और शबाब उत्तरी राज्य के पतन का कारण थे। यदि आप मुझे दकियानुसी या धर्मांध समझें, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्त्री या पुरुष का व्यवसाय क्या है? क्या वह शराब और शबाब नहीं है? हमारी आज के समाज में क्या इनका मुख्य स्थान नहीं? इसराइल में इन पापों के आ जाने से परमेश्वर ने उन्हें दंड देना उचित समझा। इसका मतलब यह है कि आज भी वह दंड देना उचित समझता है। होशे नबी की पुस्तक 7 अध्याय उसके 6 पद में हम पढ़ते हैं, जब तक वे घात लगाए रहते हैं तब तक वे अपना मन तंदूर के समान तैयार किए रहते हैं, उनका पकाने वाला रात भर सोता रहता है, वह भोर को तंदूर की धधकती लौ के समान लाल हो जाता है। सब कुछ स्त्री और पुरुष की लालसा को भड़काने के लिए किया जाता था। यदि मेरे चारों ओर गंदगी हो तो मैं क्या चुनूंगा? हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा देखें, कुछ अच्छा सुने, परंतु पाप की स्वतंत्रता के कारण हमें स्वतंत्रता नहीं कि हम चुनाव करें। होशे 7 अध्याय के 7 पद में लिखा है, वे सब के सब तंदूर के समान धधकते और अपने न्यायियों को भस्म करते हैं, उनके सब राजा मारे गए हैं और उनमें से कोई मेरी दुहाई नहीं देता है। ध्यान दीजिए, लिखा है उनके सब राजा मारे गए हैं। उत्तरी राज्य में एक भी अच्छा राजा नहीं था। यहूदा के इतिहास में कम से कम 5 राजा अच्छे थे, परंतु इसराइल में एक भी अच्छा राजा नहीं था। आप जान रहे हैं, इसराइल उत्तरी राज्य था और यहूदा दक्षिणी राज्य था। जी हाँ, सब के सब एक दूसरे से बढ़कर दुष्ट थे। आहाब और इजेबेल तो दुष्टता की पराकाष्ठा थे। उनके छोटे से इतिहास में 9 राजवंश बदले, हत्याओं का क्रम चलता रहता था। उनका पहला राजा यरोबाम था, शीघ्र ही उसका वंश घात किया गया और दूसरा राजा बैठा, शीघ्र ही उसका वंश भी घात किया गया। कुछ राजाओं का राज्य काल तो इतना कम था कि उनके पुत्र सिंहासन पर बैठ ही नहीं पाए। यह उन पर परमेश्वर का दंड था। परमेश्वर ने दाऊद के वंश को आशीषों की प्रतिज्ञा दी थी, उत्तरी राज्य का कोई भी राजा दाऊद के वंश से नहीं था। होशे 7:8 में हम आगे पढ़ते हैं, एप्रेम देश के लोगों से मिला जुला रहता है, एप्रेम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी न गई हो। एप्रेम देश के लोगों से मिला जुला रहता है। परमेश्वर खिचड़ी पसंद नहीं करता है, वह चाहता है कि उसके लोग अलग रहें, उनकी अलग पहचान हो। एप्रेम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी न गई हो। मेरे प्रियो, होशे की पुस्तक में अनेक घरेलू उदाहरण हैं। एप्रेम एक ओर से तो पक चुका था, परंतु दूसरी ओर कच्चा ही था। कहने का अर्थ यह है कि एक ओर से तो वे परमेश्वर के लिए लालायित थे, परंतु दूसरी ओर वे ठंडे थे। एक पुरुष जंगल में भटक गया। अंत में उसने एक झोपड़ी देखी और वहां गया। वहां रहने वाले ने उसे भीतर बुलाया। वह ठंड से आया था, इसलिए अपने हाथ फूंक कर गर्म कर रहा था। उस झोपड़ी में रहने वाले ने पूछा, तुम हाथों को क्यों फूंक रहे हो? आगंतुक ने कहा, गर्म करने के लिए। उसने उसे दाल का कटोरा दिया तो वह उसे भी फूंकने लगा। झोपड़ी में रहने वाले ने पूछा, तुम दाल को क्यों फूंक रहे हो? आगंतुक ने कहा, ठंडा करने के लिए। झोपड़ी का मालिक उठकर बाहर भागा और कहने लगा, मुझे ठंडा गर्म फूंकने वाले अच्छे नहीं लगते हैं। मेरे मित्रों, जहां तक मसीही विश्वास का प्रश्न है, ऐसे अनेक विश्वासी हैं, वे एक समूह के साथ तो गर्म होते हैं, परंतु दूसरे समूह के साथ ठंडे पड़े जाते हैं। वे एप्रेम के समान हैं, चपाती उल्टी नहीं गई है, सिर्फ एक तरफ पक रही है। होशे 7:9-11 में हम आगे पढ़ते हैं, परदेशियों ने उसका बल तोड़ डाला, परंतु वह इसे नहीं जानता। उसके सिर में कहीं कहीं पके बाल हैं, परंतु वह इसे भी नहीं जानता। इसराइल का गर्व उसी के विरुद्ध साक्षी देता है। इन सब बातों के रहते हुए भी वे अपने परमेश्वर यहोवा की ओर नहीं फिरे और न उसको ढूंढा है। एप्रेम एक भोली पंडुकी के समान हो गया है जिसके कुछ बुद्धि नहीं। वे मिस्रियों की दुहाई देते और अशूर को चले जाते हैं। मेरे प्रियो, क्या आपने कभी फक्ता का शिकार खेला है? यदि फक्ता के घोंसले, यानी कि एक प्रकार की पक्षी है, कि घोंसले में अंडे या बच्चे हैं, तो वह आपको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ऐसा दिखाती है जैसे उसका पंख टूट गया है, परंतु यह उसके हित में उचित व्यवहार नहीं है, क्योंकि एक तो आपको इससे समझ में आ जाएगा कि उसके घोंसले में अंडे या बच्चे हैं, दूसरा वह अपनी जान को जोखिम में डालती है। एप्रेम ने परमेश्वर के पास सहायता हेतु जाना उचित नहीं समझा। पहले तो वह मिस्र के पास गए। जब मिस्र ने उनकी सहायता करने से इनकार कर दिया, तब वे अशूरों के पास गए। वे एक मूर्ख फक्ता पक्षी के समान यहां वहां भाग रहे थे। मेरे प्रियो, यह कैसा चित्रण है। होशे 7:12 में लिखा है, जब वे जाएं, तब उनके ऊपर मैं अपना जाल फैलाऊंगा, मैं उन्हें ऐसा खींच लूंगा जैसे आकाश के पक्षी खींचे जाते हैं, मैं उनको ऐसी ताड़ना दूंगा जैसी उनकी मंडली सुन चुकी है। जब हम छोटे थे, तब एक बड़े डब्बे के एक सिरे को उठाकर उसके नीचे दाना डाल देते थे। फक्ता उस दाने को खाने के लिए डब्बे के नीचे जाता तो हम धागे से खींचकर उस डब्बे को गिरा देते, वह फक्ता उसमें बंद हो जाता। परमेश्वर कहता है कि उनके ऊपर मैं अपना जाल फैलाऊंगा। होशे 7:13 में लिखा है, उन पर हाय, क्योंकि वे मेरे पास से भटक गए, उनका सत्यानाश हो, क्योंकि उन्होंने मुझसे बलवा किया है। मैं तो उन्हें छुड़ाता रहा, परंतु वे मुझसे झूठ बोलते आए हैं। परमेश्वर ने उन्हें बचाने की व्यवस्था की थी, परंतु वे जीवित एवं सच्चे परमेश्वर से दूर भाग रहे थे। जैसा कि हम में से कई लोग आज परमेश्वर के निकट आने के बजाय वे दूर भाग रहे हैं। होशे 7 अध्याय के 14 पद में लिखा हुआ है, वे मन से मेरी दुहाई नहीं देते, परंतु अपने बिछौने पर पड़े हुए हाय हाय करते हैं। वे अन्न और नए दाख मधु पाने के लिए भीड़ लगाते और मुझसे बलवा करते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे अकाल उन पर परमेश्वर का दंड था। वे भोजन की कमी के लिए शिकायत कर रहे थे, परंतु अपने आप को वे सुधार नहीं रहे थे। होशे 7 अध्याय उसके 15 और 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं उनको शिक्षा देता रहा और उनकी भुजाओं को बलवंत करता आया हूं, तो भी वे मेरे विरुद्ध बुरी कल्पना करते हैं। वे फिरते तो हैं, परंतु परम प्रधान की ओर नहीं। वे धोखा देने वाले धनुष के समान हैं, इसलिए उनके हाकिम अपनी क्रोध भरी बातों के कारण तलवार से मारे जाएंगे। मिस्र देश में उनके ठट्ठों में उड़ाए जाने का यही कारण होगा। लिखा है कि वे धोखा देने वाले धनुष के समान हैं। आप उस धनुष में तीर चढ़ाते हैं तो उसकी रस्सी टूट जाती है। आप ऐसे धनुष पर विश्वास नहीं कर सकते। मिस्र देश में उनके ठट्ठों में उड़ाए जाने का यही कारण होगा। मेरे प्रियो, मिस्र उनके अस्थिर स्वभाव के कारण उन्हें ठट्ठों में उड़ाएगा। यह परमेश्वर के वचन का अत्यधिक गंभीर अंश है। होशे अपने समय का एक ग्रहण योग्य भविष्यद्वक्ता नहीं था। वह आज होता तो भी लोग उसे स्वीकार नहीं करते, परंतु हमें उसके संदेश को सुनना है कि हमारा भला हो। मेरे प्रियो, इसराइल के भविष्यद्वक्ताओं का संदेश स्थानीय तो था ही, परंतु दूर भविष्य का संदेश भी उनके प्रबोधन में था। होशे और यर्मिया की भविष्यवाणियों से अधिक हमारे लिए अन्य कोई भविष्यवाणी नहीं है। उन्होंने अपने राष्ट्र के पतन की भविष्यवाणी की, परंतु उनके संदेश से हमें भी सतर्क हो जाना चाहिए। परंतु मुझे नहीं लगता कि हम संभलेंगे। मुझे डर है कि हमें भी इसराइल के समान दंड न मिले, क्योंकि हम भी रेखा पार कर चुके हैं। मेरे मित्रों, अगले अध्याय में परमेश्वर इसराइल को दंड देने का कारण बताएगा। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा और परमेश्वर की वाचा का मान नहीं रखा। अब्राहम के साथ बंधी वाचा, मूसा के साथ बंधी वाचा उनको भी बांधती थी। मूसा की वाचा तो विशेष करके उस देश के संदर्भ में थी। परमेश्वर ने कहा था कि यदि वे उसकी सेवा करेंगे तो वहां बसने पाएंगे, नहीं तो वह उन्हें अन्य जातियों के अधीन कर देगा। परमेश्वर ने दाऊद के साथ भी वाचा बांधी थी। इसराइल ने सब वाचाओं को तोड़ दिया। परमेश्वर अपनी वाचा को निभाता है। वाचा तोड़ने का परिणाम दंड था। उनका दंड था कि वे उस देश से बाहर किए जाएं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह देश सदा के लिए उनका नहीं होगा। वह उन्हें फिर लाएगा, परंतु तब जब वे फिर से परमेश्वर की ओर लौटेंगे। मेरे मित्रों, इससे पता चलता है कि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। आज यदि आप भी परमेश्वर से भटक गए हैं, पाप में जीवन जी रहे हैं, हत्या है, व्यभिचार है, चोरी है, कुदृष्टि है, निंदा और अभिमान, जो कुछ भी आपके जीवन में है, यदि आप उन सारी बुराइयों से फिरकर परमेश्वर की ओर आते हैं, तो वह आपको क्षमा करेगा और इतना ही नहीं, वह आपको स्वीकार भी करेगा। यदि आज आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के पास आएं, तो निश्चय ही आप आ सकते हैं। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। आपने इस बात को जान लिया है कि परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि आप उसकी ओर आ जाएं। तो आप एक सही निर्णय लेकर अपने कदम को आगे बढ़ाएं और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दें।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है, यीशु का लहू गया मुझे छू। तो वाला कीर्ति